तो आज हम देख रहे हैं कुछ ऐसे सोर्सेस को जो साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, इनके बारे में काफी कुछ बताते हैं।
हाँ, और हमारे पास एक साइबर एक्सपर्ट के इंटरव्यू के कुछ हिस्से भी हैं, जिनमें असल मामले, रियल केसेस और चेतावनियां शामिल हैं।
सही, तो मतलब मकसद साफ है, ये समझना कि डिजिटल दुनिया में खतरे क्या हैं और हमारी जानकारी का इस्तेमाल या शायद कहें मिसयूज कैसे हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं।
तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि डेटा आज के जमाने में कितनी बड़ी ताकत बन गया है।
जी बिल्कुल, सोर्सेज में बताया गया है कि कैसे कुछ देश जैसे चीन, वो अपने नागरिकों का डेटा कंट्रोल करने के लिए अपनी ही क्लोन एप्स बनाते हैं।
अच्छा, ताकि डेटा देश के बाहर ना जाए।
हाँ, जबकि बाकी दुनिया का डेटा तो आप देखिए ग्लोबल कंपनियां इकट्ठा कर रही हैं, और ये सिर्फ मतलब विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है, जैसे लोगों की राय, उनका व्यवहार, उसको बदलने के लिए भी।
एग्जैक्टली।
हाँ, वो सुंदर टिचाई वाले एक वायरल इंटरव्यू का भी जिक्र है ना, जिसमें पूछा गया कि क्या गूगल को पता होता है कि कोई रात को किस होटल में रुका था।
हाँ, और जवाब था हाँ। तो ये सिर्फ जानना नहीं है, जैसा सोर्सेज इशारा करते हैं, ये एक तरह से जरूरतें पैदा करने और लोगों की इच्छाओं और डर को कंट्रोल करने जैसा है।
बाप रे। अच्छा, और ये डेटा लीक कैसे होता है, मतलब क्या तरीके हैं?
देखिए कई तरीके हैं, एक तो ब्राउजर में जो ऑटोफिल होता है, अगर वो अपडेटेड नहीं है तो बस एक क्लिक और आपकी सारी डिटेल्स, नाम, ईमेल, बैंक डिटेल, पासवर्ड्स सब जा सकती हैं।
ओह।
फिर जैसे आधार कार्ड की कॉपी हम कहीं भी दे देते हैं, वो भी सेफ नहीं है, हमेशा मास्ट आधार देना चाहिए
जिसमें वो पहले 8 डिजिट छुपे होते हैं।
हाँ बिल्कुल, और सर्वर हैक तो खैर होते ही रहते हैं, पर एक जो खास चिंता आजकल है वो है AEPS फ्रॉड।
AEPS यानी
आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जी, जिससे आप सिर्फ फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जैसी जगहों से, जहां जमीन वगैरह की रजिस्ट्री होती है, वहां से लोगों के फिंगरप्रिंट्स क्लोन करके, मतलब कॉपी करके, उनके बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं।
अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है।
हाँ, हालांकि अब UIDAI की वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर आप अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं, ये एक जरूरी कदम है।
ये तो हुए तकनीकी खतरे, लेकिन फ्रॉड तो बहुत पर्सनल लेवल पर भी हो रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक पत्रकार का केस है, उसे एक लड़की का ईमेल आया कि वो आत्महत्या करने वाली है। तो उसे ढूंढने के लिए काफी, जैसे कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ी, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीकों से जानकारी निकलवाना।
अच्छा।
ईमेल में खास ट्रैकिंग लिंक, IP ग्रैबर डालकर लोकेशन पता की, फिर पुलिस की मदद ली।
पर कहानी शायद और भी उलझी हुई थी।
हाँ, कहानी और गहरी निकली, पता चला कि उस लड़की को उसका बॉयफ्रेंड ही ब्लैकमेल कर रहा था।
क्या बॉयफ्रेंड?
जी, उसका फोन खो गया था, जो बाद में मिल गया, लेकिन मिलने से पहले उस लड़के ने उसमें RAT यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन डाल दिया था।
RAT
मतलब वो जासूसी वाला सॉफ्टवेयर।
हाँ।
जिससे वो दूर बैठे ही लड़की के फोन का कैमरा, माइक, सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। ये दिखाता है कि कैसे रिश्तों में भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है, और इमोशनल प्रेशर कितना खतरनाक हो सकता है।
यकीन नहीं होता। और वो गिफ्टिंग स्कैम का भी जिक्र है।
हाँ, वो भी एक उदाहरण है। एक पढ़ी लिखी महिला थी, उन्हें UK से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, दोस्ती बढ़ी, फिर उस दोस्त ने कहा कि उसने एक महंगा गिफ्ट भेजा है जो कस्टम में फंस गया है
और जुर्माना भरना पड़ेगा।
हाँ, छोटे अमाउंट से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके उस महिला ने लोन लेकर 55 लाख रुपए दे दिए।
55 लाख?
जी, बाद में पता चला कि उसे वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। अपराधी अक्सर लोगों के अकेलेपन या इमोशनल अटैचमेंट का फायदा उठाते हैं।
अविश्वसनीय है कि लोग कैसे, मतलब कॉमन सेंस के बावजूद फंस जाते हैं, जैसे वो डीप फेक वाले वीडियोस।
हाँ, वो भी। स्रोत बताते हैं कि कैसे सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी जैसे बड़े नामों के डीप फेक वीडियो बनाए जाते हैं।
डीप फेक मतलब AI से बने नकली वीडियो जो असली लगते हैं।
बिल्कुल, और इन वीडियोस में ये लोग नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का प्रचार करते दिखते हैं। लोग 20,000 रुपए जैसी रकम भी लगा देते हैं, ये सोचकर कि इतने बड़े लोग कह रहे हैं तो सही होगा।
और जालसाज कितना कमा लेते हैं इससे?
एक पकड़े गए जालसाज ने तो बताया कि वो महीने में 10-15 लाख रुपए तक कमा लेते थे, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर।
कमाल है। अच्छा, और ये जो हमारे घरों में वॉइस असिस्टेंट हैं, जैसे अलेक्सा।
हाँ,
इनका क्या रोल है?
वो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सोर्सेज में बताया गया है कि अलेक्सा की रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल मर्डर के सुलझने तक में हुआ है। अमेज़न को कोर्ट की ऑर्डर पर वो रिकॉर्डिंग्स देनी पड़ी।
अच्छा।
हाँ, और ये डिवाइस इतने स्मार्ट है कि सिर्फ 3 शब्द सुनकर आपकी पहचान कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा डेटाबेस और प्रोफाइलिंग की क्षमता है इनके पास।
और बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है इस सबका, ये भी एक चिंता की बात है।
जी बिल्कुल, चीन ने तो बच्चों का इंटरनेट यूजेज दिन में सिर्फ 45 मिनट तक लिमिट कर दिया है।
क्यों?
क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये रील्स और शॉर्ट कंटेंट बच्चों का फोकस खत्म कर रहे हैं, उनकी सीखने की क्षमता कम हो रही है। बच्चे आजकल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं।
हाँ, और दूसरों की वो जो परफेक्ट लाइफ दिखती है सोशल मीडिया पर, उसका भी दबाव होता होगा
बहुत ज्यादा। और बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करना भी खतरनाक है। AI का इस्तेमाल करके उनकी मॉफ्ट मतलब बदली हुई आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, या उन्हें अलग अलग उम्र का दिखाया जा सकता है। बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? डिजिटल दुनिया में सेफ रहना तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है।
है तो, जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा हमने देखा स्कैम लगातार बदल रहे हैं और पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं।
तो फिर रास्ता क्या?
शायद इन कहानियों से सीखना, जैसे आज हमने बात की, यही सबसे असरदार तरीका है। हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा।
हाँ, मतलब कौन सा ऐप क्या परमिशन ले रहा है ये देखना।
बिल्कुल, अनजान लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। अपनी पर्सनल जानकारी, खासकर आधार या फिंगरप्रिंट जैसी चीजें, बहुत सोच समझ कर शेयर करनी है।
सही का। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम।
हाँ जरूर।
कि जैसे जैसे ये AI और ताकतवर हो रहा है और हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कहीं हम एक ऐसे भविष्य की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जहां हमारी अपनी मर्जी, हमारी स्वायत्तता वो कम होती चली जाएगी और उसे एल्गोरिदम और वो लोग कंट्रोल करेंगे जिनके पास डेटा है?
ये वाकई सोचने वाली बात है।